नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रैलियां की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने केबिन क्रू की हड़ताल के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वेमुलावाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की उपलब्धियों का श्रेय लोगों को दिया है।
भाजपा और एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारा जो रायतु बंधु है, नेचुरल फार्मिंग, नैनो यूरिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश त्वचा के रंग के आधार पर लोगों का अपमान नहीं सहेगा। तेलंगाना के वारंगल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि राष्ट्र प्रथम है, जबकि कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जैसी पार्टियों के लिए परिवार सबसे पहले है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुत से मुख्य प्रचारक आज अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में अपनी पहली राजनीतिक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रायबरेली के बछरावा क्षेत्र में प्रचार किया और जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों और मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी दोगुनी कर दी जाएगी।
नौजवानों के लिए 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं उनको भरने का काम हम तुरंत शुरू कराएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिसमें से अगर आप अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उस फंड में से आपको पैसे मिलेंगे। ये खास नौजवानों के लिए है। हम सरकार की तरफ से जो भी स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए हम ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1 लाख रुपए सालाना नौजवानों को मिलेगा जब तक उनकी स्थायी नौकरी नहीं है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी झूठे वायदे करती है। उन्होंने बाद में फर्रुखाबाद में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पार्टी उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में लखीमपुर खीरी जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। बाद में वे हरदोई और कन्नौज जिलों में राजनीतिक सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे जालौन जिले में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और सशक्त बनाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि उनके नेता के जेल में होने के बावजूद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। भाजपा और कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अपने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज भारतीयों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री पित्रोदा ने भारत की संस्कृति और पहचान तथा देश के लोगों का अपमान किया है। इससे पहले श्री पित्रोदा ने देश के विभिन्न हिस्सों के निवासियों की तुलना चीनियों, अफ्रीकियों, अरब और गोरों से की थी। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि भारत की विविधता को दर्शाने के लिए श्री पित्रोदा ने जिस तरह का उदाहरण पेश किया वो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इस टिप्पणी से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मायावती ने कहा कि उन्होंने पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ साथ आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में उन्हें इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से तब तक के लिए अलग किया जा रहा है जब तक वे पूर्ण परिपक्वता हासिल नहीं कर लेते। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारामन ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू को विघटित या फिर उलट पलट किए जाने संबंधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। श्री गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नरेन्द्र मोदी सरकार में फल फूल रहे हैं। हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तीनों निर्दलीय विधायक पुंदरी से रणधीर गोलन, नीलोखेरी से धर्मपाल गोंदर और दादरी से सोमवीर सिंह सांगवान ने अपने निर्णय को लेकर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भेज दिया है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र की पुणे संसदीय सीट की जानकारी दे रहे हैं।
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना माना पुणे राज्य में मुंबई के बाद एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर है। इस बार शहरी मतदाताओं को बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए पुणे शहर में 35 बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में स्वतंत्र मतदान केंद्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन ये भाजपा, शिवसेना, महायुति, महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पुणे लोकसभा कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। 2014 में सीट बीजेपी के पास जाने से पहले इस सीट से अब तक 10 कांग्रेस सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के मुरलीधर मोहोळ महायुति के उम्मीदवार है, जबकि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कांग्रेस के रविन्द्र धंगेकर है। एक समय यह संसदीय क्षेत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 में बीजेपी के अनिल शिरोड़े और फिर 2019 में गिरीश बापट ने इस सीट पर जीत हासिल की। पुणे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें एनसीपी के अजीत पवार गुट के 1, बीजेपी के 4 और कांग्रेस का 1 विधायक है। इसे देखते हुए बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसलिए इस बार फिर कांग्रेस के लिए लड़ाई आसान नहीं है। मनोज क्षीरसागर, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कहा कि उसने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो देशभर में भोले भाले नौजवानों को विदेशों में आकर्षक नौकरियां दिलवाने का झांसा देता था। इस मामले में सीबीआई ने केरल और मुंबई के 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चालक दल के सदस्यों की हड़ताल के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी और बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी हुई। एयरलाइंस के चालक दल के कर्मचारियों ने प्रबंधन की कुछ नीतियों के खिलाफ सामूहिक रूप से छुट्टी ले ली। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से कल रात से उड़ानें बाधित रहीं। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और बेंगलुरू के लिए 1 घरेलू उड़ान सेवा रद्द कर दी गई। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान रद्द होने के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने को भी कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज तेज हवाएं चलने और आंधी तूफान तथा बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि देश के दक्षिणी क्षेत्रों और पूर्वी हिस्सों में जारी भीषण गर्मी की स्थिति में धीरे धीरे कमी आएगी। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने बताया कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में आज तक तथा गुजरात में अगले 5 दिन तक उमस भरी गर्मी की स्थिति रहने का अनुमान है।
पूर्व भारत में हीट वेव कंडीशन जा चुका है, ऐसे कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन जो थंडरस्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल जो वार्निंग हम लोग दिए हैं, ये अभी कंटिन्यू करेगा। जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारा इलाका में अभी जो है थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड एंड स्क्वॉल रहेगा। कल ऑलरेडी कोलकाता और बंगाल एरिया में काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है, इसी को देखते हुए हम लोग ऑरेंज कलर वार्निंग जारी किया है। हीट वेव का बात करें तो तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। राजस्थान का इलाका है और मध्य प्रदेश का इलाका है, इसमें हीटवेव डेवलप हो सकता है 1 से 2 दिन तक।
इधर राजस्थान के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुछ स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है।
भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में लू जैसे हालात बने हुए हैं। तेज गर्मी के कारण कई कस्बों और शहरों में लोग दिन में घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। गर्मी को देखते हुए सरकार ने जिला कलेक्टरों को स्कूलों की छुट्टियां करने या उनके समय में बदलाव करने की जिम्मेदारी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आज और कल तेज गर्मी का असर रहेगा, इसके बाद परसों गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
बांग्लादेश में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी 163वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कल श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि रवीन्द्र साहित्य पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ हमारा मुख्य सहारा था और उनके गीत बांग्लादेश के महान मुक्ति संग्राम में संघर्ष की प्रेरक शक्ति थे। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संदेश में कहा कि बंगाली कविता, गीत, लघु कथाएं, उपन्यास, निबंध, नाटक, गीतों, नाट्य और नृत्य नाटकों को रवीन्द्रनाथ टैगोर के जादुई हाथों में पूर्णता मिली है। आज विश्व रेडक्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस है। संरक्षण, सहायता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले लाखों कर्मचारी और स्वयंसेवकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। थैलेसीमिया की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जा रहा है। यह रोग तब होता है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। प्रतियोगिता में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया था। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान संजू सैमसन ने 46 गेंद में 86 रन बनाए, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने राजस्थान को 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन पर ही रोक दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रैलियां की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने केबिन क्रू की हड़ताल के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।